포기해서. ज्ञान एक शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को ही बताता है। शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को जो नहीं देखता वो द्वादशांग ज्ञान को नहीं जानता, क्योंकि द्वादशांग ज्ञान का प्रयोजन शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की ख्याति है। शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को न देख कर जो कोई शब्द और अर्थ को ही देखता है वो जिनागम को जानता ही नहीं है। चैतन्य गायक भगवान आत्मा सभी प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है, उसके बिना सिद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। और ये यदि समझ में नहीं आती है तो कुछ भी समझा नहीं है। कि शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा द्वादशांग के शब्द शब्द का प्रयोजन है। पक्ष न रहे और पक्षातिक्रांत हो जाए, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी जैसा समागम पंचम काल का अमृत चौथे काल में मिले और हम नहीं पिए, टोडरमल जी ने भी लिखा है, कोढ़ी को अमृत पान कराए और वो न करे, बात समझ में आ गई। छोटा सा उदाहरण है, कोढ़ी है, कोढ़ी उसको कोढ़ हुआ है और दवाई भी है, दवाई नहीं है ऐसा नहीं है, दवाई भी है, बीमारी है, बीमारी की दवाई भी है, लेकिन सेवन नहीं करता। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा सदाकाल विराजमान है, लेकिन एक समय के लिए उसकी तरफ झुक करके अनुभव नहीं करता, इसलिए अनादिकाल से पक्ष में है, आज भी पक्ष में, कि पक्ष से पक्षातिक्रांत कैसे हो, एक बिंदु उसमें से, कि चक्रवर्ती जैसा वैभव हो, 11 अंग का ज्ञान हो और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन वाला चारित्र हो, इन सब को चैतन्य भगवान आत्मा के अनुभव के लिए जो त्यागने के लिए तैयार न हो, वो पक्षातिक्रांत नहीं हो सकता। तीनों ही वैभव में चक्रवर्ती जैसा वैभव हो, चारित्र में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो और ज्ञान में 11 अंग तक का द्वादशांग का भी ज्ञान हो, लेकिन इन सब से निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा उत्कृष्ट न दिखे, तो जीव पक्ष में ही पड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही होगी, ये तो विचार ऐसा होना चाहिए कि ऐसे समागम में भी यदि मैं पक्षातिक्रांत नहीं हुआ तो दोबारा ये अवसर कब आएगा कोई पता नहीं है। इस अवसर में, अवसर समझ में आ गया किरण भाई, मूल तत्व तक आ गए, मूल तत्व तक आ गए, और स्वामी जी के यदि प्रवचन ध्यान से सुने हो तो अनंत बार ऐसे आए, इसमें भी कोई नयापन नहीं है। इसमें नयापन लाने के लिए क्या करें, कि सबको भूल कर एकमात्र चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ही दिखाई दे, तड़प धड़क ऐसी हो कि मुझे उसके बिना चैन न पड़े, नहीं तो पक्ष में अटक जाएगा। अरे इतनी तैयारी के साथ बैठो कि यहां से उठते समय पक्षातिक्रांत होकर के उठ जाऊं। रत्नग्रंथ श्रावकाचार का आधार है कि इस हुंडाव सर्पिणी पंचम काल में कोई भी समय दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता, इसका मतलब विराधक जीवों ने यहां जन्म लिया, ये तो पूर्व का दोष है। वर्तमान में अपने चैतन्य देव की आराधना नहीं करता, ये वर्तमान का दोष है। समझ में आ गई बात, कि पूर्व के दोष से तो यहां आ गए, लेकिन पूर्व का दोष भी तभी तक था जब तक पूज्य गुरुदेव जी जैसा, स्वामी जी जैसा मर्म को खोलने वाला नहीं मिलता। और यदि वो मिल गया है तो केवल कान का विषय नहीं बने, क्षोभ सम ज्ञान का विषय नहीं बने, उस चैतन्य तत्व का ही अभ्यास, अभ्यास का मतलब अभी मति ज्ञान की अपन व्याख्या करने वाले हैं, उसमें आ जाएगा कि अभ्यास का मतलब क्या है। यहाँ जो अपन चर्चा कर रहे पक्षातिक्रांत की, कि जीव दोपहर के स्वाध्याय में आई थी बात, कि स्वामी जी का वाक्य था कि राग के राग का राग जीव को जब तक है तब तक पक्षातिक्रांत नहीं होता है, कि अभिप्राय में भी राग बसा हुआ है। तीसरे नंबर का राग निकल जाता है तो दूसरे नंबर के राग को चारित्र की कमजोरी वाला अस्थिरता का राग कहते हैं, लेकिन अस्थिरता वाला राग तो बाद की बात है, पहले तो तीसरे नंबर वाला राग निकले और वो निकल जाए तो जीव पक्षातिक्रांत है। ये शब्द केवल प्रवचन के लिए नहीं है भैया, और ये वास्तव में तो पंडिता ही माथे पड़ी ये तभी तक है जब तक अपन को नहीं संभाले। ये पंडिताई भी शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के सामने धूल जैसी लगे तब तो जीव को प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। इस गाथा में पक्षातिक्रांत रहने के लिए नहीं लिखा, और अमृत चंद्राचार्य जी ने जो टीका लिखी वो इसलिए नहीं लिखी कि जीव पक्ष में ही पड़ा रहे। यहाँ तो सभी प्रकार के शिष्यों की चर्चा है। इसमें एक अवलंबन शब्द आया था अवस्तम्भ, श्रुत ज्ञान अवस्तम्भ, ये तो मध्यम रुचि वाले शिष्य की बात है। जो कोई उत्कृष्ट पुरुषार्थ वाला जीव है उसको श्रुत ज्ञान के अवस्तम्भ की भी आवश्यकता नहीं है। सोगानी जी की तरह ज्ञान जुदा और मेरे आत्मा जुदा, कितने से शास्त्र की आवश्यकता थी, राग जुदा ज्ञान ना। ये भाषा वर्गना जीव के अधीन नहीं, इसलिए कभी अभिमान नहीं करे। कितने से ज्ञान की आवश्यकता है बताओ। एक बात और बताओ कि जिसको द्वादशांग ज्ञान प्रकट है और किसी को इतना सा ही ज्ञान है कि राग जुदा और आत्मा जुदा, दोनों ने आत्मा देखा तो कैसा दिखा? कि शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड, दोनों को कैसा दिखा? केवली को और छद्मस्त को शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा कैसा दिखता है? अलग अलग कि नहीं? पंडित साहब आप जो पढ़ रहे थे प्रवचन सार, कि अनुभव करने वाला जीव भी श्रुत केवली, पांच विशेषणों से आपने ली थी, कि यहाँ पक्षातिक्रांत कैसे हो तब तो स्वाध्याय सही हो गया। और पक्षातिक्रांत नहीं और कल आना पड़े पक्षातिक्रांत होने के लिए तो आज का स्वाध्याय, आज का दिन सार्थक कैसे हो? कि अनादि काल से एक ही काम धंधा चल रहा है, खेमजी भाई की भाषा में नुकसानी का ही धंधा जीव का एक ही धंधा चल रहा है नुकसानी का, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो जो नुकसानी का धंधा है वो पर्याय में हो रहा है, मेरे में कभी नुकसान होता ही नहीं है। मैं ऐसा शुद्ध अखंड शाश्वत चैतन्य देव हूं कि मेरे में कभी नुकसान होता ही नहीं है, न बढ़ती होती है न उसमें कोई घटती होती है। अगुरुत्व अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति, कौन सी शक्ति है? अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है, उसके कारण से अनादिकाल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होती। और केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो कोई वृद्धि होती है, ऐसा नहीं। सुबह स्वामी जी के प्रवचन में आई थी बात, अक्षर के अनंत वे भाग ज्ञान रह जाए या केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य में क्या फर्क आ गया? कोई उसका आश्रय लेकर के पक्षाती क्रांत हो जाता है और कोई उसका आश्रय न लेकर के संसार में ही भटकता है, तो उसमें क्या फर्क आ गया? उसमें कोई फर्क नहीं आया है। सभी प्रकार के जीवों की चर्चा है, ये तो मध्यम रुचि वाले जीव की चर्चा है। कौन सी? कि श्रुत अवष्टम्ब, अरे ये तो पुरुषार्थ की हीनता है कि श्रुत का अवलंबन लेना पड़ रहा है, कि मेरी पर्याय में मुझे ही जानना है, ये भी विकल्प की और व्यवहार की भाषा है। मुझे जानना भी नहीं है, मैं तो ज्ञान का पिंड हूं। पर्याय भी अभी ये कहे कि मुझे मुझको जानना है, तो पर्याय भी अभी पक्ष में है, कि पर्याय ये कहे कि मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मैं तो ज्ञान का पिंड हूं। ऐसी पर्याय जब बोलती है और सविकल्प से जब यह जीव निर्विकल्प होता है, अभेद हो जाता है, तन्मय हो जाता है, होना जाना तो क्या है, वो कहने की बातें हैं, द्रव्य द्रव्य में रहता है और पर्याय पर्याय में रहती है। पर्याय में जैसा द्रव्य है उस द्रव्य का पूरा वैभव आ जाता है। उसको पक्षातिक्रांत की अभेद दशा कहते हैं। आज और कल दो ही समय हैं, रजनी भाई का आदेश है साधर्मी के नाते, पर ख्याति हेतु अखिलान अखिला एव इंद्रिय अनिंद्रिय बुद्धि अवधार्य, ये शब्द है। क्या लिखा है? मति ज्ञान की बात है कि आत्मख्याति के लिए, कि आत्मख्याति किसको करनी है? कि जिसने देखा नहीं उसको करनी है, जो जिसकी ख्याति होनी है उसको तो ख्याति की भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात? जिसकी ख्याति होनी है उसको ख्याति की भी आवश्यकता नहीं है। जब तक ध्रुव का जोर नहीं आता तब तक पर्याय में सुधार नहीं होता। जब तक ध्रुव शुद्ध चैतन्य का जोर न आए, पक्ष न आए, तब तक पर्याय में सुधार नहीं होता। और फिर आगे जाकर के सुर तो ऐसे निकलते हैं कि पर्याय सुधरे तो सुधरे और नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, मैं तो सुधरा हुआ चैतन्य तत्व हूं। स्वामी जी ने प्रवचन शुरू करने से पहले कि खरे खर तो भगवान आत्मा शुद्ध छे, अभी शुरुआत भी नहीं की थी, वो बात कहां से आई? कि शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति के बिना शास्त्रों के अर्थ या मर्म समझ में नहीं आते। यही शब्द देख लो आप कि कौन सा शब्द है, ज्ञान स्वभावम आत्मानम, कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि ज्ञान स्वभाव मतलब कौन से ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं? शब्दार्थ तो इतना ही है, कितना? कि आत्मा का अर्थात मेरा ज्ञान स्वभाव है, शब्दार्थ तो इतना है, लेकिन कौन से ज्ञान स्वभाव की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र करना चाहते हैं? आविर्भाव तिरोभाव वाले या पर्याय वाले या त्रैकालिक? तो सीधा सा जवाब इतना सा है, इसमें तर्क विचार इतना सही है कि जिस ज्ञान स्वभाव का निर्णय होने पर जीव पक्षातिक्रांत होता है, उस ज्ञान स्वभाव की चर्चा है। समझ में आ गई बात? ये दृष्टि स्वामी जी से मिलती है, कि कौन से ज्ञान स्वभाव की चर्चा, कि मैं जानता हूं, बहुत बड़ा जानता हूं, मैं पहले ये था, मैं पहले वो था, इतना जानता था, ये जानता हूँ, उस जानने की चर्चा है क्या इसमें? हाँ? कि उस ज्ञान से तो पक्ष में अटक गया, उससे पक्षातिक्रांत नहीं हुआ है। उस ज्ञान स्वभाव की चर्चा है, जिस ज्ञान स्वभाव से यह जीव पक्षातिक्रांत होता है, अर्थात त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव की बात है, वर्तमान में वर्तती पर्याय के ज्ञान स्वभाव की चर्चा नहीं है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव, उस स्वभाव को जीव ने अपना माना नहीं, पर्याय में जानना देखना होता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसको जानना देखना मेरा स्वभाव मानना, थोड़ा सा ध्यान से सुन सकते हैं आप लोग, उसको अपना जानना देखना स्वभाव माने तो पक्षातिक्रांत नहीं होगा। बात समझ में आ गई? उस ज्ञान पर्याय में पाए जाने वाले जानने देखने के जो कार्य है, उन कार्यों को यदि वो ज्ञान स्वभाव माने तो वहां अटक जाएगा। अटकने के रास्ते अनंत है बहुत। कि यहाँ शास्त्रों का ज्ञान मान करके मैं ज्ञानी बैठा हुआ हूँ तो मुझे 0 नंबर मिलने चाहिए। त्रिकाल ज्ञान स्वभाव से मैं यदि ज्ञानी हूँ तो मुझे नंबर मिलने चाहिए, और कोई नंबर दे नहीं दे अपने को तो अपने से मतलब है। क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। पर ख्याति हेतु, पर ख्याति हेतु, हेतु का अर्थ है खर्च कर दिया। जीव ने जिस ज्ञान पर्याय में अपने चैतन्य स्वभाव का निर्णय करके अपने रहने के लिए घर ढूंढ सकता था, उस ज्ञान पर्याय ने में इस जीव ने दूसरे ज्ञान को तो बिठा दिया, बाहर बाहर लगाया, जिसके कारण से बाहर की तो ख्याति हो गई लेकिन अपने घर की ख्याति नहीं। बहुत सारी बातें तो मैं नहीं बताऊंगा। युगल जी ने पूजन वो 4 पंक्ति वाले श्लोक लिखते हैं कि बाहर के देवताओं का फंक्शन तो होता रहा है, ऐसी पंक्ति याद भी है, लेकिन उसमें समय पर नहीं खर्च करेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा ही है। कि पर ख्याति, कि इस जीव ने पर की तो ख्याति की ज्ञान के द्वारा, लेकिन ज्ञान जिसका है उस ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान की ख्याति नहीं की। क्या नहीं किया? पक्ष में क्यों रहा? कि पक्ष में इसीलिए रहा कि पक्षातिक्रांत की जो विधि है, पक्षातिक्रांत होने का जो उपाय है, जो तरीका है, बाबू भाई के मुंह से हमने, बाबू भाई में तो बड़े हो गए, उनके मुंह से पहली बार सुना था और लिख लिया था डायरी में, एक हो ये तरण काल मा परमारथनो पंत। विधि एक ही है भैया, एक ही विधि है कि जो वर्तमान वर्तती ज्ञान पर्याय अपने आप को भूल जाए और सर्वस्व पने मैं त्रिकाल ध्रुव रूप है ऐसा जाने, तो उसी को अनुभूति कहते हैं। कि वो काम इस जीव ने क्या किया, देखो यहां क्या लिखते हैं, गलती भी बता रहे आचार्य अमृतचंद्र। पक्ष में क्यों रहा कि पर ख्याति हेतु, कि जितना भी ज्ञान है, अरे अंतर्मूर्त तक स्वरूप में रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, ऐसी दशा जीव की है। ज्ञान का यदि सदुपयोग करे कितने समय के लिए, संसार के कामों से जीव को फुर्सत नहीं है और जीव को रुचि भी नहीं है। रुचि किसकी होनी चाहिए? कि अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की ही रुचि वास्तव में रुचि है। शास्त्र ज्ञान की रुचि भी वास्तव में रुचि नहीं है। इस जीव ने अपने ज्ञान को उलझा दिया है। अब कहाँ कहाँ उलझाया? एक तो संसार के कामों में उलझा दिया, समझ में आ गया। सुबह से शाम तक अब तक जो ज्ञान गया वो कहाँ गया? कि सारा का सारा पर की ख्याति में गया। और स्वामी जी के कई प्रवचनों में है सेकंद का असंख्यात्वा भाग भी जीव ने अपने स्वरूप को समझने के लिए नहीं लगाया। आता है, सुना है आप लोगों ने? हैं, हम स्वामी जी के शिष्य तो कहलाते हैं, हैं, लेकिन नामधारी शिष्य, अनुभूति हो जाए तो सच्चे शिष्य है। जो माल उन्होंने दिया, जो माल उन्होंने बताया, वास्तव में तारणहार गुरुदेव कब, कि जब खुद तर जाए तो समझ लेना तारणहार है। और उन्होंने कहा कि तारण तरने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तेरा तेरे पास ही है, है? चेतन भाई ने बताया था ना एक दिन कि भगवान बनाऊंगा नहीं, बताऊंगा, क्योंकि प्रत्येक जीव द्रव्य स्वभाव से देखो तो परमात्मा स्वरूप ही है, इसमें कोई साधुवाद नहीं है, है? और रही बात पर्याय की, कि पर्याय को पर ख्याति की प्रसिद्धि में लगा दे, पर की प्रसिद्धि में लगा दे तो क्या होगा, कि पर की ही प्रसिद्धि हो जाएगी, है? लोक में तो उसको मूर्ख कहते हैं जो दूसरे के काम करे और घर का काम नहीं करे, लोक में तो वो मूर्ख है, हाँ? और हम कितने बड़े मूर्ख हैं, हाँ? जिस ज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति करके निराकुल चैतन्य आनंद को ये जीव भोग सकता है, हाँ? कितना सरल मार्ग है, लेकिन पक्षातिक्रांत जब तक नहीं होता तब तक कठिन ही लगेगा। असल में होता क्या है कि जीव को अनुयोगों का ज्ञान भी नहीं है सही मायने में, तो लौकिक जितने भी संयोग वियोग परिणमन है वो कर्म के उदय के अनुसार होते हैं, तुझे उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य से अड़ता नहीं है, कोई किसी का काम करता नहीं है, लेकिन तू पागल बुद्धि सुबह से शाम तक ये मानता है कि मेरे करने से होता है, ये मूर्खता है, हा? दूसरे का काम करे उसको तो दुनिया मूर्ख कहे, लेकिन यहाँ ठंडे दिमाग से बैठो, एक बार विचार तो करो, पक्ष लेकर बैठे हो कोई बात नहीं, अनादिकाल का जीव ऐसा ही है, लेकिन पक्षातिक्रांत होकर के तो उठ जाओ एक बार, फिर किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, फिर तो रमणता की आवश्यकता है। और वो अस्थिरता में स्वाध्याय आदि हो तो करो, लेकिन मूल काम तो करो। खूब उदाहरण स्वामी जी भी देते हैं कि मूल वो क्या है, कि कोई किसी को पैसे दे दिए थे, ब्याज ब्याज तो दे रहा है और मूल नहीं दे रहा है। मूल जो चीज है वो अपने भीतर है, अनादि से है, और उस मूल को नहीं पहचानने से, उस रूप अनुभव नहीं करने से संसार है, इसीलिए दुख है। किसी को भी पूछो कि रमणी भाई कैसे हो, कि मजा मचू, और काय का मजा मचू, ये चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय नहीं है तो कहीं भी मजा नहीं है, चाहे तीन लोक का वैभव हो, उसके बिना कहीं आनंद नहीं, कहीं मजा नहीं, वो क्यों नहीं आ रहा है, तो यहां दोष बता रहे कि पर ख्याति हेतु वर्तमान में वर्तता जितना भी ज्ञान है इस जीव ने आत्मख्याति के लिए उसका उपयोग करना चाहिए था, वो नहीं किया, पर ख्याति के लिए उसने खर्च कर दिया, है? इसलिए अखिल एव इंद्रिय अनिंद्रिय बुद्धि, बात समझ में आ गई कि इसने सारे इंद्रियों को, सारे मतलब मन को, अनिंद्रिय जो मन है, पांच इंद्रिया और छठा मन, इन सब को कहां लगा दिया, हा? बात समझ में आ गई। मान कषाय तो इतनी भरी पड़ी है, पूछो मत। श्रीमद रायचंद जी की भाषा में कहे, मान के साय निकल जाए तो यही मोक्ष हो जाए। दुनिया भर के पक्ष, पक्षों की कोई गिनती नहीं है साहब, अटकने के रास्ते बहुत है। और इंद्रिय और मन से जो ज्ञान बाहर जाता है वो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, और इंद्रिय मन से जो ज्ञान बाहर जा रहा था उसका वर्णन, वर्णन तो गुजराती शब्द समझ जाते हैं सभी, कि यदि त्रिकाली की ओर हो जाए, बात समझ में आ गया, वही ज्ञान अतिंद्रिय हो जाए। कितना समय लगे वो हमारे पास नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रयत्न तो करो। बेंसरी तो कहती है कि अनुभव नहीं हो तो गहरे संस्कार, कौन सा शब्द लिखा है, गहरे संस्कार तो डालो, हैं कषायों में कब तक उलझते रहोगे, हैं प्रयत्न तो करो, नहीं है बात, प्रयत्न नहीं करते हो तो दोष ही दोष है, सफलता मिले न मिले। और वो खुद भी लिखती हैं कि सफलता न मिले तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए, पकड़ में आ गई बात, कि मिलेगी सफलता लेकिन करना ये पड़ेगा। ये सब पक्षातिक्रांत कराओ, कौन कराता है, किसका कराता है, स्वयं को होना है, और कैसे होना है, कि पर ख्याति हेतु, पर की प्रसिद्धि में क्या लग गया, कि पांचों इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान बह रहा है वो, मन के द्वारा जो ज्ञान निकल रहा है वो, जब इनके दरवाजे से निकलता है तो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, और इनके ये दरवाजे बंद कर दे, क्या कर दे, ये दरवाजे बंद कर दे, ये तो उदाहरण है भैया, बंद करने खोलने का कोई वहाँ व्यवस्था है नहीं, तो भाषा है कि उस ज्ञान को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर मोड़ दे, मोड़ देगा तो ये दोष निकल जाएगा। आगे लिखा है कि इंद्रिय अनिंद्रिय बुद्धि अवधार्य, इनको अवधार्य, अवधार्य का मतलब क्या पंडित साहब, संस्कृत पढ़िए, अवधार्य का अर्थ है इस ज्ञान में एकमात्र शुद्ध चैतन्य की ही प्रीति जगा। समझ में आ गई बात, कि शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की रुचि जगा किसमें, कि जैसे शब्द ज्ञान में तू बाहर की रुचि जगाता है, नहीं आई बात समझ में, कैसे, हम अपना ही उदाहरण लेते हैं कि इतने स्वामी जी के इतने बार के प्रवचन इस गाथा के पढ़ के आ जाएंगे, उसमें से बातें लिख लेंगे, लोगों के सामने बताएंगे तो लोग मुझे बहुत बड़ा विद्वान समझेंगे, एक तो उदाहरण है, है ना, ये उदाहरण है। जैसे ऐसे विकल्प करते हैं वैसे मति ज्ञान में ये विचार करें कि मैं यदि इस ज्ञान को अपने चैतन्य देव की ओर मोड़ता हूं तो अनादिकाल का मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा, अनादिकाल का दुख नष्ट हो जाएगा, और मुझे अतिंद्रिय आनंद और अतिंद्रिय की शांति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा सोचे ऐसा विचार करे तो मति ज्ञान का अवधार्य हो गया, नहीं तो मति ज्ञान बह रहा है, लोग कह रहे कि बहुत बड़ा विद्वान है, लोग कह रहे बहुत बड़ा सेठ है, लोग कह रहे बहुत बड़ा दानी है, तो ज्ञान यदि मति ज्ञान उधर जा रहा है तो औदार्य नहीं हुआ। समझ में आ गई बात, समझ में तो आती होगी, थोड़ा विकल्प जल्दी का भी एक एक ही प्रवचन है। आगे लिखा है आत्मा भी मुखी कृतम मति ज्ञान तत्व, क्या लिखा है इसमें, पहली बात तो ये समझ लेना कि पक्षातिक्रांत होने वाले जीव की चर्चा नहीं है, जो पक्षातिक्रांत हो चुका है जीव उसकी चर्चा है। नहीं, नदी के इस पार कोई व्यक्ति खड़ा था और वो व्यक्ति उस पार कैसे गया, तो उसके लिए बताया कि इस विधि से गया, इसलिए ये संस्कृत जानने वाले अवधार्य इसमें लप प्रत्यय ऐसा करके, क्या शब्द है इसमें, ऐसा करके वो उस पार गया, अर्थात संसार से तर गया, सिद्धांत में संसार से कैसे तर गया कि उसने अपने मति ज्ञान को खुली छूट नहीं दी। और मति ज्ञान को खुली छूट दोगे तो क्या होगा कि अनादिकाल के संस्कार तो विषय भोगों के पड़े हुए हैं, और यदि मति ज्ञान को खुली छूट दे दोगे तो उन संस्कारों के अनुसार नहीं, बात समझ में, खुली छूट दे दोगे तो मति ज्ञान कहाँ जाएगा। अरे खुली छूट दे देंगे तो जैसे संस्कार है उधर वो चला जाएगा। करना क्या है, आत्मा भी मुखी कृतम मति ज्ञान तत्व। क्या वैभव है हमारे पास, अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कौन से ज्ञान है, एक तो मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है, सभी जीवों को है, अनादि से है। अब ये जो है उसी का तो उपयोग करना है, और जो है उसी का सदुपयोग करना है। अब तक दुरुपयोग होता रहा है कि मति ज्ञान का सदुपयोग का मतलब क्या, देखो लिखा है संस्कृत में, आत्मा भी मुखी कृतम। नहीं बात समझ में, अभी अभी सविकल्प दशा है, मति ज्ञान को चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ कर दिया, लेकिन अभी भी निर्विकल्प दशा नहीं है, सविकल्प दशा में है। लेकिन फर्क क्या आ गया, इसको सविकल्प दशा क्यों कहा। बहुत विकल्प आते हैं पंडित साहब संस्कृत पढ़ने से, कि अभी मति ज्ञान त्रिकाली ध्रुव तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसने अपना मुंह त्रिकाली ध्रुव की तरफ कर दिया, शब्द है ना इसमें, आत्मा अभिमुखी कृतम। इतनी संस्कृत तो मैं धीरे धीरे बता करके पढ़ा भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कि मति ज्ञान आत्मा भी मुख किया, और मति ज्ञान यदि शास्त्राभिमुख है या भगवान आदि के अभिमुख है या व्रतादि के अभिमुख है तो अभी पात्रता नहीं है। बात समझ में आ गई, ऊर्ध्वता की बात है, किसी के निषेध की बात नहीं है। जैसे समय सार में ये कलश आता है कि जहाँ प्रतिक्रमण आदि की निंदा की जाती है वहां पर अप्रतिक्रमण को अमृत मत समझना, प्रतिक्रमण को जहां विष्कुंभ बताया वहां अप्रतिक्रमण को अमृत मत समझना, जहां स्वाध्याय का विकल्प छुड़ाया वहां स्वाध्याय नहीं करने का प्रयोजन नहीं था। स्वाध्याय देखो, चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का जो विचार नहीं करता वो भी अनुभूति प्राप्त नहीं करता, और जो विचार में ही अटकता है, दोनों ही, विचार नहीं करता वो भी, और जो विचार में ही अटकता है वही संतुष्ट हो जाता है, मुझे इतना समझ में आ गया, वो भी अटक जाता है। तो यहाँ जिस पंक्ति तक अपन पहुंचे हैं यहाँ तक अभी लक्ष्य नहीं मिला, लेकिन जहाँ लक्ष्य है वहाँ मुंह हो गया है, ये संस्कृत पढ़ने के फायदे हो जाते हैं कई बार, कि आत्मा अभिमुखम, कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ इंद्रिय और जो मन इनके निमित्त से जो ज्ञान जा रहा था उसको कहाँ किया, आत्मा भी मुख किया, और मति ज्ञान तत्व, मति ज्ञान तत्व को कहाँ किया उसने, एक तो है देखो मति ज्ञान, एक तो होता है ज्ञान और एक है ज्ञान का तत्व। यहाँ तत्व शब्द लिखा, श्रुत ज्ञान में भी तत्व शब्द आया और मति ज्ञान में भी तत्व आया, कि सभी जानते हैं तो मति ज्ञान है, और तत्व की जानते हैं तो मति ज्ञान तत्व है। नहीं ये बात समझ में, श्रुत ज्ञान में भी आएगी दोबारा, कि सामान्य जो ज्ञान है वो तो मति ज्ञान है, और जिस मति ज्ञान में भले ही अभी सविकल्प दशा है जानना भी सामान्य है लेकिन तत्व का है, प्रयोजन भूत है, नहीं तो आचार्य अमृतचंद्र तत्व क्यों कहते हैं? और तत्व के नाम पर जिनागम में तो एक ही तत्व है, नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति, कि नव तत्व में रहता हुआ भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता वही एक तत्व है, और उसकी तरफ यदि मति ज्ञान हो गया है तो मति ज्ञान को भी तत्व की संज्ञा प्राप्त होती है। तथा इस प्रकार नानाविध नए पक्ष अवलंबनेन, क्या है? नानाविध नए पक्ष अवलंबनेन, एक मति ज्ञान के संबंध में बेंसरी से जब पूछा अनुभूति वगैरह के बारे में तो उन्होंने मति ज्ञान तत्व की बारे में ये कि जिसमें जिसको हमेशा आत्मा 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 की रटन लगी रहती है, हैं? कि मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, क्यों? कि सामान्य ज्ञान वो मति ज्ञान का विषय है और मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष विचार करे वो श्रुत ज्ञान है, ये परिभाषाएं हम पढ़ते हैं, नहीं आई बात समझ? मति ज्ञान के द्वारा पदार्थ जानते हैं और मति ज्ञान के द्वारा स्वामी जी ने भी इसका आधार लिया था, श्रुतम मतिपूर्वम तत्वार सूत्र का, उमा स्वामी जी का नाम भी बताया। श्रुत ज्ञान कब होता है? कि मति ज्ञान पूर्वक, कि मति ज्ञान में जब तक आत्मा नाम का पदार्थ न आए तब तक आत्मा के बारे में विशेष विचार कैसे चलेंगे, हा? और आत्मा में एकाग्र न हो तो विचारों का अभाव कैसे हो? तीनों बातें समझ में आ गई। विधि ये है इसकी कि चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा जब तक मति ज्ञान में न आए तो उसके बारे में विशेष विचार नहीं होते, और विशेष विचार न हो तो श्रुत ज्ञान में पहुँचाने, और श्रुत ज्ञान में पहुँचने के बाद यदि उसका ध्यान का ध्येय नहीं किया तो विचार विचार ही चलते रहेंगे, निर्विचार नहीं होगा। समझ में आ गई बात कि विचार से निर्विचार, ये तो भाषाओं की बातें हैं, देखो विचार करना निर्विचार होने के लिए, ये तो भाषा की बात है, वास्तव में विचार करना चैतन्य तत्व का निर्विचार होने के लिए, हाँ निर्विचार निर्विकल्प और टोडरमल जी ने तो लिखा है निर्विकल्प बना नहीं है, विचार तो रहता है, तर्क भी दिया कि विचार न रहे तो आत्मा जड़ हो जाए, विचार न हो तो आत्मा जड़ हो जाए, ऐसा बताया, लेकिन बात विचार की नहीं है। पांच बिंदु ज्ञान के संबंध में दोपहर में लिए थे, दोपहर में चर्चा चली, स्वाध्याय चला, तो उसमें पांच बिंदु लिए थे, रिपीट नहीं करेंगे। विचार आप करो अथवा न करो चलते रहते हैं, नींद में भी है, चेतन भाई ने तो त्रिकाली ध्रुव में भी सविकल्प निर्विकल्प घटाया था, है ना ध्यान? बात वो नहीं है, विचार कौन सा करना, कि जिस विचार से निर्विचार दशा प्राप्त हो, विचार विचार ही रहे तो विकल्प बना रहेगा, उस विचार में त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हो तो निर्विचार हो सकता है। निर्विचार का मतलब समझ लेना, ये था योग्य विकल्प रहे। अब संकल्प विकल्प के भी बहुत सारे अर्थ हैं, है? ये जो चौदहवीं गाथा के पहले श्लोक है, दसवां श्लोक, वहां विकल्प का अर्थ है मैं सुखी और मैं दुखी, पंचास्ती काय के सातवीं गाथा में संकल्प और विकल्प, विकल्प का भी अर्थ यही है, वो चर्चा अपन नहीं करेंगे। यथा योग्य लिखा भी है यहाँ पर कि जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वो वहाँ समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें समझना नहीं है, हमें तो ध्येय का ध्यान करना है, समझना नहीं है, समझने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। यद्यपि जो द्रव्य संग्रह की गाथा है 47वें नंबर की, उसके प्रवचन में 217 नंबर का बैंसरी का बोल है, उस पर स्वामी जी के जो प्रवचन है उसमें है कि पहले ज्ञाता का, पहले ध्येय का, पहले सच्चा ज्ञान होता है। सच्चा ज्ञान न हो तो ध्यान कहाँ टिकाएगा, ये तर्क है स्वामी जी का। ये सभी के लिए लागू होता है कि हमें अभी ध्येय का ही पता नहीं है तो ध्यान किसका करे। अब वो सहज होता है कि प्रयत्न साध्य होता है तो हेमचंद जी बताएंगे उनका विषय चल रहा है दोपहर में, इसलिए समझ में आ गई बात। अरे रुचि हो तो पुरुषार्थ अपने आप उस ओर चला जाता है। हकीकत में त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा की रुचि नहीं है। रुचि होती तो विकल्प आते। एक छोटा सा घर बनाना हो तो कितने विकल्प करता है, और चैतन्य आत्मा को जानना है विकल्प नहीं कर रहा। नहीं आई बात समझ में? अपनी अपनी देख लेना भैया, और आप अपने आप को ही देख सकते हैं, मैं अपने आप को देख सकता हूँ। दोष हो उसको दूर करना, और त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा तक जब तक वो दिखाई न दे तब तक कहीं रुकना मत। रुकोगे तो पक्ष में रहोगे, और नहीं रुकोगे तो पक्षाती क्रांत हो जाओगे। शेष विषय अपन कल चलाएंगे। सभी जीव पक्षातिक्रांत हो ऐसी भावना भाता हूँ, सिद्धालय में विराजमान हो ऐसी भावना।